हरे कृष्णा। तो आज का श्रीमद् भागवतम श्लोक अध्याय दो श्लोक संख्या स्कंद आठ श्लोक संख्या पांच और छः। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडदद्भिर्जुष्टकन्दर। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडदद्भिर्जुष्टकन्दर। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडदद्भिर्जुष्टकन्दर। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दर। छह संख्या, इसको भी हम पाठ करें। यत्र संगीत सन्नादैर ननद गुहम मर्सया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिना परसंकया। यत्र संगीत सन्नादैर नदद गुहं मर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिना परसंकया। यत्र संगीत सन्नादैर नदद गुहं मर्षया अभिगरजन्ति हरयः श्लाघिना परशंकया। यत्र संगीत सन्नादैर नदद गुहं मर्षया अभिगरजन्ति हरयः श्लाघिना परशंकया। सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडदद्भिर्जुष्टकन्दरः। पाठ करें।
विद्याधर महोरगै
सिद्धचारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै
सिद्ध लोक के निवासी चारण लोक के निवासी गंधर्वई तथा गंधर्व लोक के निवासियों द्वारा विद्याधर लोक के निवासी महाउरगई सर्प लोक के निवासियों द्वारा किन्नरई किन्नरों के द्वारा अप्सराओं से च तथा क्रीडत भी खेल कूद में लगे जुष्ट विलास में लगे कंदरह गुफाएं। उच्च लोकों के निवासी सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर उरग किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सामान्य लोग खारे लवण सागर में क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उच्च लोकों के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। यत्र उस त्रिकूट पर्वत में संगीत गायन की सन्नादयी ध्वनि से नदत प्रतिध्वनि गुहम गुफाएं अमर्षया असह्य क्रोध या ईर्षा के कारण अविगर्जंती दहाड़ते हैं हरयः शिंग श्लाघना अपने बल पर अत्यंत गर्वित परशंकया दूसरे सिंह की आशंका से। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह जिन्हें अपनी शक्ति पर अति गर्व है असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। उच्चतर लोकों में यह केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य ही हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहां वृक्ष हैं और वहां की धरती मरकतों से बनी है, ऐसी है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में शिला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, केशव तुआ जगत विचित्र। हे केशव, आपकी सृष्टि रंग विरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथा कथित विज्ञानी ग्रह मंडलों के विषय में तर्क वितर्क करते हैं, किंतु अन्य ग्रहों की विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे ही यह कल्पना करते हैं कि इस ग्रह को छोड़कर अन्य सारे ग्रह शून्य निर्जन तथा धूल से भरे हैं। इस तरह वे ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान पर गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि के स्तर वाले लोगों के द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2:3:19 में कहा गया है, स्वबिट बराहोष्ट खरही संस्तुत पुरुष पशु। भौतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते शूकर ऊंट तथा गधे से करते हैं, जो स्वयं बड़े पशु हैं। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रत्युत उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनो येन गता सपन्था, हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के उपदेशों का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और श्रील सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक हैं। स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलेर वैयाशकेर वयम। वैयाशिकी शिला सुखदेव गोस्वामी हैं, वे जो कुछ भी कहते हैं तथा वह तथ्यात्मक है, यही पूर्ण ज्ञान है। शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के चरणारविंदों में कोटिश नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आशीर्वाद करें दास के ऊपर, ताकि इस अमल पुराण के विषय में कुछ वाणी का प्रयोग किया जा सके। यह श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस स्कंद का प्रारंभ हुआ तो पहला अध्याय जो है उसमें मनु और मनवंतर का वर्णन हुआ। मनु और मनवंतर का वर्णन होते हुए जैसे ही कल्प के मनुओं का कार्यकाल आया, स्वयंभू मनु, सारोचिस मनु, उत्तम, तामस, रेवत आदि छह मनुओं का काल आया और वर्तमान समय में वैवस्वत मनु का कार्यकाल चल रहा है। यह कथा तीसरे चौथे मनु तामस के कार्यकाल की है। तामस मनु का वर्णन करते समय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, हे परीक्षित, इन तामस मनु के कार्यकाल में हरिमेधा नाम के एक ऋषि हैं, उनकी हरिणी पत्नी से हरि का जन्म हुआ। इन्हीं हरि ने ग्राह से गजेंद्र की मुक्ति कराई। ग्राह से गजेंद्र की मुक्ति कराई, यह प्रसंग आते ही परीक्षित महाराज आनंद से पुलकित और प्रफुल्लित हो उठे। ग्राह से गजेंद्र की मुक्ति भगवान हरि ने कराई तो भगवान आप मुझे यह प्रसंग सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। जब परीक्षित के इन वाक्यों को सुना, सुखदेव महाराज प्रफुल्लित हो गए। कथा कहने का आनंद तो ऐसे श्रोता के साथ ही आता है। श्रोता में रति उत्पन्न हो चुकी हो भगवान की लीला कथा सुनने के लिए, तो वक्ता का आनंद और बढ़ जाता है। वक्ता अगर योग्य कहने वाला है और श्रोता अगर श्रवण करने के स्तर पर नहीं है तो वक्ता क्या सुनाए। सारी बातों को वो आगे बढ़ा करके उसके स्तर पर आकर के फिर सुनाता है। श्रोता अगर उच्च स्तर पर है, वक्ता अगर वो रस नहीं दे रहा तो श्रोता भी खिन्न हो जाता है। हां, बहुत सारे जब प्रवचन करते समय हंसते हैं लोग, कोई प्रसंग आता है हंसते हैं लोग, और वो श्रोता बिल्कुल नहीं हंसता, इसमें हंसने वाली बात कौन सी है, क्या हंसे इस पर, इससे आगे सुनाओ, इससे आगे, तब तो कुछ आनंद आए। और जो श्रोता का स्तर नीचा होता है तो छोटी सी बात खिलखिला करके हंस देते हैं, और जो व्यक्ति जितनी जल्दी हंस देता है ना, तो समझ लीजिए उस वार्ता के साथ में उसका हृदयस्थ अंतःकरण जुड़ा है उस बात से। उदाहरण के लिए छोटी सी बात बता रहा हूं कि प्रसंग चला, एक नायक और नायिका का प्रसंग चला, ऐसे था वैसे था, एक नायक ने एक नायिका से ऐसे कहा वैसे कहा और खिलखिला करके सामने हंस दिए, इसका अर्थ है कि आपका अंतःकरण अभी वहीं पर उलझा हुआ है। इससे क्या, इन बातों से क्या, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आगे सुनाओ, तब वक्ता के अंदर प्रसन्नता आती है। ऐसा जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना, राजन आप चतुर्थ दिवस होने जा रहा है, आपने पानी तक नहीं पिया है और भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इतनी उत्कंठा, आनंद आ गया और वहां से कथा का प्रारंभ होता है। राजन मैं अवश्य सुनाऊंगा, एक विषय में यहां पर बहुत बात बताऊं मैं आपको। सुखदेव महाराज आए, परीक्षित प्रश्न करते हैं समस्त ऋषियों के साथ में, उनके उत्तरों से परीक्षित संतुष्ट नहीं होते। जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए? दान करो, पुण्य करो, जप करो, पाठशाला बनवाओ, अन्न क्षेत्र खुलवाओ। अब यह कार्य संभव नहीं है। म्रियमाणस्य से सर्वथा, जो मरने के लिए सर्वथा उद्यत हो चुका है, जिसको शरीर छोड़ना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? संतुष्ट नहीं हुए उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। बालकों से घिरे हुए, स्त्रियों से घिरे हुए, कोई उन्हें पागल समझ रहा है, कोई ये समझ रहा है ओहो कितना सुंदर हीरा है, लेकिन बदन पर कोई वस्त्र नहीं है। अगर ओहो इसकी कल्पना कर करके ना अगर सुंदर तरीके से इनको आभूषण आदि पहनाए जाए तो क्या सुंदर नवयुवक है, ये कैसा है। बहुत सारी कल्पनाओं को लेते हुए आ रहे, लेकिन सुखदेव जी किसी की तरफ भी मुखातिब नहीं हो रहे हैं और आए और सीधे आसन पर चढ़े, किसी की तरफ नहीं झांका। सुखदेव जी आ रहे हैं, सुखदेव जी आ रहे हैं, परीक्षित आसन से खड़े हुए, आसन प्रदान किया। अब प्रदान करने के बाद में प्रश्न कर दिया कि जो सर्वथा मरने के लिए तैयार है उसे क्या करना चाहिए? हे राजन, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ही जनकल्याण करेंगे, सर्व कल्याण करेंगे। यहां से कथा का प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद ही चार अध्यायों में तुरंत ही परीक्षित महाराज को बंधन मुक्त कर दिया। कौन सर्प डसेगा, कौन मरेगा, किसी का शरीर छूटेगा, ये सारी बातों को एक साथ बहा दिया और बहाने के बाद पूर्ण कल्याण करने के बाद में परीक्षित का, तब सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं आया और बैठ गया, प्रवचन चालू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, अरे मैंने तो मंगलाचरण ही नहीं किया अभी तक। तब मंगलाचरण चालू किया और मंगलाचरण चालू करने से पहले पहले परीक्षित का कल्याण कर दिया है। परीक्षित को अब बिल्कुल मन के अंदर यह भाव नहीं है कि सर्प आएगा, दंश करेगा, मृत्यु होगी, इस बात से पहले ही हट चुके हैं। अब तो मात्र ये इच्छा रह गई है कृष्णाई का जीवनम, कथई का जीवनम, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, अरे जल तो पी लो। भगवान आप जल की बात करते हैं, बात करने में भी समय व्यर्थ चला जाएगा। मैं तृप्त हूं, मैं वचनामृत, प्रेमामृत, मैं आनंदामृत पी रहा हूं, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है, आप मुझे कथामृत पिलाइए, कथामृत पिलाइए। और कथामृत पिलाते समय इतनी उत्कंठा है कि मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए, क्या सुनाइए कि किस प्रकार हरि ने ग्राह से गज को मुक्ति दिलाई। प्रथम द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृत, क्षीरो नेदा नतो व्रत श्रीमान मुतम उष्यता। आसीत गिरिवरो राजन, हे राजन, एक पर्वत है त्रिकूटस इस विस्तृता, मशहूर है, इसके तीन शिखर हैं। क्षीरो देना व्रत श्रीमान, वह क्षीर दुग्ध से भरे हुए अनंत समुद्र के बीच में विराजमान है। योजनाम अयुत उष्णता, इतना ऊंचा है 10,000 योजन, उसकी परिधि भी 10,000 योजन में फैली हुई है, 80,000 मील, 1,20,000 किलोमीटर ऊपर मानवीय बुद्धि जो भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाई है वह इस बात को समझने में असमर्थ रह जाती है। वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना, अगर बुद्धि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो शांत हो जाओ, ये मुख से कभी मत निकालो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारी बुद्धि वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। यह पृथ्वी सरसों के दाने के समान है, शेष नाग के फन पर रखी हुई है। अरे इतना बड़ा शेष नाग सरसों के दाने के समान, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपने लिए एक बंधन और लगा लिया। मोची जानता है, अरे ये क्या भगवान हाथी को यूं निकाल रहे हैं, ये तो भगवान हाथी को भी पकड़ रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर और रिंग को भी पकड़ रहे हैं, इन्हें तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस संकल्प मात्र से, देखने मात्र से, मुद्रिका से हाथी अपने आप ही निकलता बढ़ता रहेगा। इसे कहते भक्ति। तो इस प्रकार का ये क्षीर उदक है, क्षीर सागर है, क्षीर सागर में गिरिवर है, बहुत बड़ा पर्वत है, उसमें तीन शिखर है, सोने चांदी और लोहे की आभा से युक्त है, जगमगा रहा है वह पर्वत। इन तीन शिखरों के बाद में और भी बहुत सारे शिखर हैं, उन शिखरों के बाद में और नीचे जाकर के बहुत बड़े बड़े उद्यान हैं, सरोवर हैं, जलाशय हैं, उनसे और उन उद्यानों के बीच में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में उच्च लोकों के निवासी आते हैं और वहां पर क्या करते हैं, आनंद तो नहीं कहूंगा, मौज लेते हैं। कौन कौन? सिद्ध चारण गंधर्वई, सिद्ध चारण गंधर्वई, विद्याधर मोहर गई, किन्नरी रफ सरोविश्च क्रीडधिर जुष्ट कंदरा। उन कंदराओं में ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ होता है, वहां आपने देखा होगा, जानते हैं, आपको बहुत बड़ा अनुभव होगा कि जैसे समुद्र के बीच पर जाकर के ना एंजॉय करते हैं ना, ऐसा ही एंजॉय कर रहे हैं वो, एंजॉय लेने के लिए गए। और इसके बाद में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर संगीत चल रहे हैं, उनका गायन हो रहा है, उसमें आनंद ले रहे हैं। उन संगीत की ध्वनि से जो उस पर्वत पर सिंह आदि रहते हैं तो उन्हें ध्वनि प्राप्त होती है, तो ध्वनि के साथ में और ऐसी ध्वनि कहां से आ सकती है, तो सिंह गर्जना करते हैं, आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, आनंद मौज ले रहे हैं। उन कंदराओं में संगीत का आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, सभी आकर के वहां आनंद ले रहे हैं। वो ऐसा एक बीच है, ऐसी एक स्थिति है कि वहां जरूर जाना चाहिए। वहां तुम गए? मैं तो, अरे वहां जाकर के देखो कितना आनंद आता है। अरे तुम गए? तुमने समुद्र के उन खेलों को, उनको एंजॉय किया? नहीं किया तो क्या किया? अरे तुम गए वहां तो देखो क्या जाकर के आनंद आता है। इस प्रकार की मानसिकताओं को धारण करके वहां पर विराजमान है शिला प्रभुपाद जी ने। तात्पर्य अनुवाद में बहुत सुंदर बातें कही हैं शिला प्रभुपाद जी। तो बहुत चाहते हैं कि एक श्लोक पर बहुत विशद ग्रंथों की रचना हो जाए, लेकिन क्या करें शिला प्रभुपाद जी, इतना विस्तार समुद्र हमें दिया है, एक स्थान पर क्या करते हैं, इशारा करते हैं। स्वबिट बराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु यत्र कर्णो पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। स्व कुत्ता, विड बरहा सुअर, खर है, गधा और ऊंट, स्वान, सुअर, ऊंट और गधा, इनकी व्याख्या इनकी समझने के लिए भी बहुत विस्तार से एक एक के ऊपर बताना पड़ेगा। लेकिन बड़े प्रसन्न होते हैं ये, जैसी हमारी मानसिकता है, वैसी इनकी मानसिकता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम तो मेरे ही हो ना। इनका पशुओं का मन लगता है चार चीजों में, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभि नराणाम धर्मस्य एको अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभि समान। मनुष्य बनता तब है जब उसके अंदर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे, तो उस विज्ञान को जानने के लिए वो गुरु की शरणागति ग्रहण करता है। जब इसी मानसिकता के मनुष्यों को देखता है तो बोलता है अरे इसमें अंतर क्या है, तो मेरे भाई बंद हैं, मेरे जैसे ही है ना, बड़े प्रसन्न होते हैं। कुत्ता थोड़े से टुकड़ों के लिए दरवाजे पर पड़ा रहता है, दर दर की ठोकरें खाता रहता है। सुअर मलभक्षी होता है और वो समझता है कि इससे बढ़िया जीवन कोई हो नहीं सकता। ऊंट खाता तो बबूल को निकालता, उसमें खून को पीता है और कहता है क्या मैंने स्वादिष्ट खाया। गधा इतना बोझा ढोता है उसको सुख नहीं मिलता, घास तो वैसे भी प्राप्त हो सकती है उसको, लेकिन नहीं, वह समझता है कि इतना बोझा ढोकर तो वह सुखी हो जाएगा। इस प्रकार का जीवन धारण करने वाले व्यक्ति, उनकी गणना पशुओं में ही है। वो संस्करण उसका उनका चाहे ऊंचा नीचा हो सकता है, आधुनिक तरीके के साथ में ये मेरा टॉयलेट है, ये मेरा बाथरूम है और ये मेरा किचन है और मेरे पास ये बनाता हूं, तुमने ये बना के खाया, तुमने वो डिश खाई, इस प्रकार का जीवन करते हैं। एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, आप हमसे बढ़िया हैं, अरे आप बढ़िया बनिए, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करके वो समझते हैं कि मेरे को मेरी प्रशंसा कर दी है ना इन्होंने तो मैं सही हूं। ऊंट और गधा बड़े मित्र थे। एक रूपक कथा, ऊंट ने कहा कि भैया मेरी शादी है, हाँ मेरी शादी में आना। तो गधा भैया बोले कि मैं जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। ऊंट शादी के लिए तैयार हैं, निकल करके जा रहे हैं, पहुंच गए जा करके तो गधा पहुंची। तो जैसे ही ऊंट ने गधा को देखा और गधे ने ऊंट को देखा, एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। उष्ट्रा नाम विवाहेसु, गधे ने एक सुंदर गीत गाया, गधे ने एक सुंदर गीत गाया, ऊंट मुग्ध हो गया। ऊंट को देख करके गधा कहने लगा ओहो मेरे मित्र क्या तुमने रूप पाया है, मेरे मित्र क्या तुमने रूप पाया है। और ऊंट बोलता है मेरे मित्र गधा क्या तुमने बाणी पाई है, क्या तुमने बाणी पाई है, क्या तुमने। उष्ट्रा नाम विवाहेसु तीर्थम गीतम गायंती गर्धवा परस्पर प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि अहो रूपम अहो ध्वनि। प्रभुपाद जी ने उसी बात को कहा, अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है, वो बहुत वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, वो साइंटिस्ट है, वो इंजीनियर है, वो ये है, वो है, वो है। भौतिक ज्ञान का बहुत अल्प वस्तु जानने वाला व्यक्ति और जिसका उद्देश्य आहार निद्रा भय और मैथुन से आगे नहीं है, खूब खींच करके और आगे बढ़ेगा तो विनाश में चला जाएगा, उसकी बुद्धि विनाश में एटम बम बनाएगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास में इतना विनाश कर सकता हूं। और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। प्रभुपाद जी ने सुंदर तरीके से कहा है कि ये बड़े बड़े पशु हैं, ये बड़े बड़े पशु जो लीड कर रहे हैं ना समाज को, वो पशु हैं। अरे ऐसी बात क्यों कह रहे हो, वो पशु पशु इसलिए हैं कि वह परम के साथ में प्रजा का संपर्क स्थापन नहीं करने देते, न तो उनमें है और न ऐसी प्रेरणा देते हैं। धर्म निरपेक्ष समाज तो चलता रहेगा। ये यहां पर सुंदर वर्णन किया है कि जो भगवान को धारण कर, भगवान के विचारों को धारण करता है, भगवान को स्वीकार करता है, उसी का जीवन जीवन है। आगे शीला प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात और कह दी, कहने के लिए बहुत चाहत मन था मेरा कि मैं बहुत कुछ इस प्रसंग पर बोलूं, बहुत कुछ सोचने के लिए विचार कर रहा था, लेकिन संभव नहीं। आत्मकल्याण के लिए व्यक्ति को शरणागति ग्रहण करनी चाहिए एकाग्र तरीके के साथ में। व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को समर्पण करना चाहिए। कहां समर्पण करें? भगवान के भक्त के सामने। बहुत समझने की बात है, पूरा वैदिक वाङ्मय यदि आप पढ़ें और समझ लें, और भगवान से संबंध नहीं है, श्याम सुंदर से संबंध नहीं है, तो उसमें कोई भी रस नहीं है। हो सकता है कि किसी दूसरे को रस आ रहा हो, जिस प्रकार ऊंट को बबूल खा के रस आता है, कुत्ते को हड्डी निगल करके रस आता है, ऐसा आ रहा हो। कोई रस नहीं है जब तक भगवदीय सेवा का रस उत्पन्न ना हो जाए, जब तक भगवदीय गुणगान को श्रवण करने का रस उत्पन्न ना हो जाए, जब तक भगवान के पराक्रम को सुनने का रस उत्पन्न ना हो जाए। रस उत्पन्न हुआ तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके के साथ में यहां कहा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म वलिर्वया सकीर्वयम। ये द्वादश महाजन हैं, इन द्वादश महाजनों के सामने समर्पण कर दो कोई विचार किए बगैर। स्वयंभू ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म वलीर वयाशकीर वयाम धर्मराज। तो हमारे को अमृतपान कौन करा रहे हैं? वयाशकी व्यास के पुत्र सुखदेव। तो हमारे को अमल ज्ञान प्राप्त हो, अमल ज्ञान प्राप्त होने के लिए धर्म तत्व अमल ज्ञान श्रीमद् भागवतम विलक्षण वस्तु। व्यासदेव ने कितने पुराणों की रचना की? कितने की? कितने की? कितने की? हां 18 की। मेरे दिल में नहीं आती है बात, मेरे दिल में नहीं आती। कोई व्यक्ति अगर 18 पुराण की रचना व्यासदेव ने करी है तो मन नहीं भरता जब तक आप ये ना बोल पाए 17+1। क्या 17+18? ठीक है, आप संतुष्ट हैं, मेरा भी हृदय है संतुष्ट को धारण नहीं कर पा रहा। 17 पुराणों की रचना व्यासदेव ने उस अवस्था में की है जिस अवस्था में व्यास देव का संबंध नारद जी से नहीं हुआ, और संबंध होने के बाद में फिर जो ज्ञान दिया, नारद जी चले गए, उसके बाद में व्यास देव ने क्या किया? निर्गतो नारद सूत, नारद जी के चले जाने के बाद व्यास देव ने क्या किया? जो नारद जी ने बताया उसी का अनुसंधान किया, विचार किया, निदिध्यासन किया, डूब गए उसमें जा करके, और एक ही स्थान पर डूब करके भगवत धाम चले गए। प्रभु क्या करें, रचना करो भागवतम की कैसे करें? तो भगवान को देखा, जीव को देखा, भगवान की माया को देखा, काल को देखा, संग्रहित किया, संकलन किया, और संकलन करके उसका निदिध्यासन किया, उसका अनुसंधान किया, परिपक्व अवस्था में जाकर के सुखदेव जी को प्रदान किया। इसीलिए यह श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म है। क्या धर्म है? कौन सा धर्म? भागवत धर्म। समाज के लिए जो धर्म है वर्णाश्रम धर्म, समाज के लिए वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म से जो निकल चुका होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त बानप्रस्थ और संन्यास, संन्यास से आगे की धारा में जो बहकर के निकल के आया है वह भागवत धर्म को स्वीकार करेगा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषियो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादया। विद्याधर चारणादि क्या समझेंगे, ऋषि जन इसको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासाव ऋषिर यस्य मतिर्च भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। तर्को प्रतिष्ठो, तुम तर्क से उसको प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, अप्रतिष्ठ रहेगा। तर्कों में डूबते रहो, तर्क से भागवत धर्म प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियां विभिन्न हैं, विभिन्न प्रकार का गायन करती हैं। नासाव ऋषिर यस्य, ऋषियों से भी प्राप्त नहीं होगा। मतिर्च भिन्नम, उनकी मति भिन्न भिन्न है। फिर क्या करें हम? धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो गुहा के अंदर है, बहुत गहराई के अंदर है। कौन सी गुहा? महाजनो येन गता सपन्था, महाजन जिस मार्ग से चले गए उस मार्ग से चले जाओ। उन महाजनों के हृदय में ही भागवत धर्म निवास करता है। इसीलिए हम उस पथ पर चल रहे हैं कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। कभी भी मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं, समय की बर्बादी कर दी। मैं सही चल रहा हूं गलत चल रहा हूं, समय की बर्बादी हो गई। शीला प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण कर लिया है। शीला प्रभुपाद के आश्रय ग्रहण करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप विभिन्न प्रकार की मनमानी को भी धारण कर लें। शीला प्रभुपाद की विचार मानसिकता, शीला प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं। शीला प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं। हमारी चेतना शीला प्रभुपाद जी से मिल जानी चाहिए, और जो शीला प्रभुपाद जी जब गायन करेंगे आपको पूरा समझ आएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए नियतम गुहायाम, यह भागवत धर्म भगवान के भक्त से ही प्राप्त होगा। इसे आप अन्यत्र साधन से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको भागवत धर्म जब भक्त से प्राप्त होगा उसमें सहायक ग्रंथ पूरे होंगे। गुरु हैं, साधु शास्त्र सभी आपके अनुकूल होंगे। जब तक आप शरणागति वैष्णव की परम भक्त की नहीं लेंगे। विचार कीजिए, इस क्षेत्र में चलते समय बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि हम क्या करें, हम कैसे करें। ध्यान दीजिए, जब तक आप एकाग्र होकर के अपने अंतःकरण को नहीं संभाल पा रहे, आपका अंतःकरण विखंडित है, वातावरण बहुत अनुकूल है, आपके काम आने वाला वातावरण बहुत प्रतिकूल है, आपका अंतःकरण और चेतना एकाग्र है, आप प्राप्त करेंगे। कितनी भी ठोकर खा करके कहीं का भी गिरा हुआ जल समुद्र में पहुंचेगा, चाहे कितने भी पत्थरों की रुकावट आ जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। दो चीजों का मिलन अगर है, विचार करिए, दो चीजों का अगर मिलन है और समझ में आ गए, तो एक बात समझने की कोशिश करो, ये सारे मानवीय देह और मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा, इन दोनों का मिलन संधि है, तो उसका नाम है चित्त। क्या है? चित्त, जो प्रकृति में नहीं है। भूमिरापो न लोभायो खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम वे भिन्ना प्रकृति, भिन्ना प्रकृति। अंतःकरण में चित्त कहां है? इसमें प्रकृति है। उस प्रकृति को आंदोलित करने वाला, चैतन्य करने वाला, संजीवित करने वाला अगर कोई तत्व है, उसका नाम है चित्त। क्या नाम है? और चित्त भी अभी समझ नहीं पाए। चित्त से पहले चिद, चित, चित्त, चिद, चित, चित्त, चिद वस्तु है, वो संबित शक्ति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बहुत मन कर रहा था मेरा, हे मेरे श्याम सुंदर, सभी के कारण आप हो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मेरे प्यारे श्याम सुंदर, रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा के अंदर दूसरे श्लोक में बहुत बढ़िया बात कही। अब हम क्या करें?
ना धर्मम श्रुति गण निरोक्तम किल कुरु,
सब छोड़ दे।
ना धर्मम श्रुति गण निरोक्तम किल कुरु, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परचरिया मिहतनु, सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुपरम, मुकुंद प्रेष्ठत्वे परम जस्रम ननु मना।
धर्म और अधर्म का विचार मत कर, राधा श्याम सुंदर को वृंदावन की निकुंजों में निहार। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो भगवान स्वयं आए हैं और गुरु को अपनी प्रेरणा अपने समर्पण करते हुए क्या कर, मुकुंद प्रेष्ठत्व, मुकुंद के प्रियों का गायन करो, गायन करो। श्रीमद भगवद गीता में दूसरे अध्याय में जाकर के त्रैगुण्य विषय आवेदा, वेदों का सब्जेक्ट प्रकृति के तीन गुण हैं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। कोई कार्य नहीं रह जाता उसके लिए, कर्म अकर्म विकर्म निष्काम कर्म रे पीछे छोड़ो। क्या करना है? सेवा करो। क्या करना है? सेवा करो। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई इस विषय में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, नित्याय गौर प्रेमानंदे।